نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورة النساء آیت نمبر 12 سے 23 تک کریں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پارا مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالی قبول فرمائے. ہم نے سورة النساء شروع کی اور اس میں بہت اہم ٹاپکس ہم نے کور کیے ہیں. پہلا ٹاپک ہم نے جو کور کیا وہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ تقوی اللہ کا اختیار کرنا ہے اور ساری انسانیت ایک فیملی ہے، جسٹ ون فیملی. یہ چھوٹے چھوٹے جو خاندانوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں وہ پہچان کے لیے تو ٹھیک ہیں، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سارے ہمارے ہی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. اور ہم نے رشتہ داری کے اوپر بہت زیادہ بات کی تھی کہ رشتہ داری کو نبھانا. ہم نے یتیموں کے مال کی بات کی تھی کہ یتیموں کا مال کتنی بڑی امانت ہے انسان کے پاس، اور اس کو کتنا کیئرفل رہنا چاہیے ان کے مال کے بارے میں. یتیم کے مال کی نگہداشت چاہے ان یتیموں کی ماں کر رہی ہو، چاہے ان کا چچا کر رہا ہو، چاہے کوئی بھی کر رہا ہو، مگر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ان یتیموں کا مال ہے، تو اس کو اڑایا نہ جائے، اس کو کسی اور مال میں مکس کر کے اور پھر اس کو کھا نہ لیا جائے. اور پھر ہم نے بہت امپورٹنٹ بات مہر کے بارے میں پڑھی تھی کہ مہر عورتوں کو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے، اور یہ کہ اگر وہ پھر بھی واپس کر دے آدمی کو نہیں رکھنا چاہتی تو آدمی پھر لے سکتا ہے، لیکن ادروائز نہیں اسے لے سکتا، اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اسے پریشرائز کر کے اسے معاف نہیں کرا سکتا. اور ہم نے بہت اہم بات پڑھی تھی کہ سفہا کو اپنے مال نہ دے دیا کرو، کہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قیام کا ذریعہ بنائے ہیں وہ آپ ان کو دے دیں کہ بھائی جو مرضی کرتے رہیں، آپ اس کے ساتھ لوٹا دیں یا جیسے مرضی کریں. پھر ہم نے دیکھا کہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے وراثت میں حصے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف مرد کے لیے، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے. اور ہم نے بہت ہی خوبصورت یہ بات پڑھی کہ انسان کو ڈرنا چاہیے جب یتیموں کے ساتھ معاملات کر رہا ہو نا، تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کی جگہ میری اولاد ہو تو کیا ہو، اور جو مال یتیم کھاتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہے. وہ جو کھا لیں گے ظلم کے ساتھ، ان کا حق نہیں بنتا تھا، انہوں نے حق مار لیا ہوا ان یتیموں کا، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں وہ. پھر ہم نے کچھ حصے پڑھے تھے. کون کون سے حصے پڑھے تھے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک بیٹی ہو تو اس کا کتنا حصہ ہے، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کا کتنا حصہ ہے، والدین کا کتنا حصہ ہے اگر اولاد نہیں ہے میت کی، اور اگر اولاد ہے تو تب کتنا حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی بھی ہیں تو ماں کا کتنا حصہ ہے. زیادہ نہیں ہے حصے جو یہاں پہ بیان ہوئے، ہاف ہے، ٹو تھرڈ ہے، آپ آگے دیکھیں گے 1/8 ہے یا 1/6 ہے یا 1/3 ہے، اس سے زیادہ تو کوئی اور حصے ہیں نہیں، انہی کے اندر سب گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے حصے آپ نے زبانی یاد کر لینے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج بھی کچھ حصوں کی بات ہو رہی ہے، بڑی اہم آیات ہیں. کیوں اتنی زیادہ اہم ہیں، اس کی وجہ بھی آج آپ کو پتہ چلے گی. آج آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی عورت جو ایک کمزور مخلوق ہے اس کی، اور اپنا حق اکثر اوقات نہیں لے سکتی، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو اس کے حق دلاتا ہے، اور اس کے حقوق کی اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے، کیا اس نے مردوں کو انسٹرکشنز دی ہیں عورت کے بارے میں. اکثر مرد حضرات اس آیت کو تو بہت اچھالتے ہیں، دیکھا اللہ نے دو بیویاں، تین اور چار شادیوں بھی کی، اب میں ایک اور شادی کر لوں گا، لیکن ایک بیوی کو بھی کیسے رکھنا ہے، वो नहीं सीखते कि कुरान क्या बताता है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मर्द या औरत को ये बातें पता होंगी जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अनलेस उन्होंने कुरान सीखा हो। उसके अलावा मैंने नहीं आम लोगों के अंदर इस चीज का चर्चा सुना। जैसे कि 2 3 4 शादियों का तो हर एक को पता है, किसी बच्चे को भी उठा के पूछ ले, लेकिन बीवी को रखना कैसे है, एक बीवी के साथ भी कैसे रहना है, ये भी तो अल्लाह ने कुरान में बताया, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है। इसी तरह एक ईमेल मेरे पास आई और उन्होंने बड़ा ये इतराज सा किया। उन्होंने कहा मेरा खामिद मुझे बुलाता है अपने पास, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरी मर्जी नहीं है, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता। और क्या औरत का ये उसके ऊपर फर्ज है, क्या लाजिम है उसके ऊपर कि अपने शोहर का दिल ऐसे खुश करे अगर उसका दिल नहीं चाह रहा। तो आप ये देख लें कि यहाँ पे क्या हमारी सेंस है। हम शादियां करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि औरत के क्या फराइज है और मर्द के क्या फराइज है, ये हम बिल्कुल इससे नाबलद हैं, बिल्कुल नहीं जानते। इसीलिए तो ऐसा सवाल आता है ना। तो औरतों को पता होना चाहिए कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं, उनके क्या फराइज हैं और क्या चीजें ऑप्शनल हैं, ये पता होना चाहिए औरतों को, क्योंकि कयामत के दिन पूछ होगी इन फराइज की। और मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ, ये हमने पढ़ा है ना 1 2 3 और 4 बीवियों का पिछले सबक में, तो आप ऐसा करिए लिख लें अपने पास, आप ये सोचें कि अगर आपके शौहर की और भी 3 बीवियां होती और वो आपके पास सिर्फ चौथी रात गुजारने आता, 3 रातें उसने कहीं और गुजारनी होती, तो 4 चीजों में मैं उसके साथ कैसे होती, मैं क्या पहनती ओढ़ती जब उसने आना होता, मैं क्या खाने बनाती कैसे खाने बनाती जब उसने आना होता, मैं घर को कैसा रखती जब उसने आना होता, और चौथा सवाल बहुत अहम है कि मेरा उसके साथ सलूक कैसा होता, बोलचाल कैसी होती, रवैया कैसा होता, क्या एटीट्यूड होता, क्या उसके साथ मैं जो बातचीत है या जो उसके साथ टाइम है वो कैसा स्पेंड करती, कैसे उसके साथ मैं मामला करती, कैसा मेरा सलूक होता उसके साथ, कैसा मेरा अखलाक होता उसके साथ, ये चौथा सवाल है। ठीक है, अब आपने इन 4 सवालों के जवाब ऑनेस्टली लिखने हैं और उसके बाद देखना है कि अगर अल्लाह ने मेरे शौहर को सारी जिंदगी मेरे लिए ही एक रख दिया है और उसके पास और कोई नहीं है, तो इसके बाद फिर मुझे कितना शुक्र अदा करना चाहिए, इसके बाद मुझे कितनी उसकी कदर करनी चाहिए, और फिर अगर क्या ऐसी चीज मेरे साथ होती कि शौकनों का मेरे ऊपर एक, यानी एक औरत के लिए बड़ी मुश्किल चीज है ना शौकन को बर्दाश्त करना, तो शौकनों का अगर अल्लाह ने मेरे ऊपर एक ये मुश्किल नहीं डाली तो, और मेरे शौहर को सिर्फ मेरे लिए ही रहने दिया, तो इसके बाद फिर मुझे क्या करना चाहिए, कैसा मेरा रवैया होना चाहिए, कैसा मेरा सलूक होना चाहिए, अपने जवाबों की ही रोशनी में देखें। लेकिन अब वो सिर्फ चूंकि मेरे लिए रह गया तो मुझे कोई कदर नहीं है, हाँ वो कहीं और 3 शादियां और उसने भी की होती तो फिर मुझे कितनी उसकी कदर होती, बजाय इसके कि हम इतनी कदर करें कि शुक्र है अल्लाह का ये ऐसा नहीं हुआ, हम उल्टा काम करते हैं, यही इस कदर ना कदरी करते हैं, ना शुक्री करते हैं, और हमारे रवैये कैसे होते हैं, तो ये चीज को सोचना चाहिए हमें। तो अब एक औरत का काम तो 4 के बराबर का हो गया ना, कि उसको जितना 4 ने करना था वो एक औरत को करना चाहिए, ठीक है, उतनी अवेलेबिलिटी उसको देनी चाहिए अपने शौहर को, उतना ही उसके साथ जैसा सलूक करना चाहिए। लेकिन मसला ये होता है जब मुकाबले हो रहे थे ना, तो फिर तो इंसान बड़ा आगे बढ़ बढ़ के करता है, जब मुकाबला ही कोई नहीं फिर चाहे सारे दिन गंदी मंदी बन के रहती रहे, चाहे जैसा भी सलूक करें, पता जो है कि मेरे पास ही आएगा और किसके पास जाना। तो ये चीजें सोचने की हैं, इन पे भी तदब्बर करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं आयत नंबर 12 से 23 तक, आसान आयतें हैं, बहुत आसान है। पहली आयत जो है इसमें आपके पास एक टेबल खुल गया होगा, आपको लिंक मिल चुका होगा, उस टेबल को ओपन कर ले तो इंशाअल्लाह ताला ये आयत समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम, और लिए तुम्हारे आधा है जो छोड़ा अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियों ने, इल्लम यकुल लहुन्न वलद, अगर ना हो उनके लिए औलाद। मर्द को कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए हाफ है जो तुम्हारी बीवियों ने छोड़ा। बीवियों में से कोई भी फौत हो जाती है बीवी, तो तुम्हारे लिए उसकी विरासत में से आधा हिस्सा है, लेकिन एक शर्त है, इल्लम यकुल लहुन्न वलद, अगर उनके कोई औलाद ना हो। फइन कान लहुन्न वलद, फिर अगर है उनके लिए औलाद, अगर उस औरत की जो तुम्हारी बीवी थी दुनिया से चली गई, अगर उसकी औलाद थी, चाहे तुमसे है या किसी पहले शोहर से है, फलकुम रुबु मिम्मा तरकना मिम बादी वसीयति यूसीना बिहा औ दैन, तो फिर तुम्हारे लिए रुबु है, 1/4 है, क्योंकि औलाद को भी तो मिलना है ना। अगर तो वो बे औलाद थी, कहीं से भी बे औलाद थी, पिछले शोहर से भी बे औलाद थी, इसके पास भी बे औलाद रही, तो फिर तो आधा इस शोहर को मिलेगा। लेकिन अगर वो औलाद वाली है, तो फिर इस शोहर को, जिसके निकाह में वो इस वक्त है, उसको 1/4 मिलेगा। अब यहां से भी एक बात को समझें आप, कि यानी शोहर तो उसका उसके मरने के बाद भी रहा, ऐसा नहीं है कि वो मरने के बाद वो गैर महरम हो गया, अब उसको देख नहीं सकते, तो फिर ये किसको कहा जा रहा है? मा तारा का अजवाजुकुम, जो तुम्हारी बीवियां छोड़ गई, वो तो मर गई, अब तो बीवी ही नहीं रही। तो ये जो कहते हैं ना, और आगे मर्द भी अगर मर जाए तो उसके लिए भी आएगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये जो एक गलत बात मशहूर कर दी गई है कि शोहर फौत हो जाए तो औरत का उसके साथ ताल्लुक खत्म हो जाता है, और अब वो उसका चेहरा भी नहीं देख सकती, चेहरा नहीं देख सकती, लेकिन उसका माल ले सकती है, विरासत ले सकती है। सोचने की बात है ना। तो ये ऐसी बातें नहीं उछालनी चाहिए। मिम्बादी वसीयत यू सीना भी है औदैन, मगर ये किसके बाद विरासत मिलेगी शोहर को, जबकि जो वसीयत है वो भी पूरी कर दी गई, और कोई कर्ज की अदायगी थी जो इस औरत के जिम्मे थी, वो भी पूरी, कर्ज भी अदा कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि पहली चीज जो पूरी करनी होती है, वो उस मरने वाले के माल से कफन दफन का इंतजाम, कब्र का इंतजाम, जैसे इन मुल्कों में ये भी काफी एक्सपेंसिव होता है। तो अगर कोई और करना चाहे तो ऑप्शनल है, वो कर सकता है, उसकी नेकी है, लेकिन अगर नहीं, तो फिर उसी जो जाने वाला है उसी के माल में से करना चाहिए, कफन दफन का इंतजाम, कब्र का इंतजाम। उसके बाद नंबर 2 पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, जनाजे के मौके पर ये पूछा जाए कि किसी का कर्ज तो नहीं अदा करना इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ते थे जिसके ऊपर कर्ज होता था। ये सोचें कितनी सीरियस बात है। और बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी हुकूमत अच्छी हो गई थी, जब ज़रा मुसलमानों के हालात सही हो गए थे, तो बैतुल माल में से उसको कर्ज अदा कर दिया जाता था। तो चाहिए कि उसके वारिस उसका कर्ज अदा करें। यहाँ पे होता ये है कि वारिस अपने लेके बैठ जाते हैं, जल्दी जल्दी बांट लिया उसको, उसके ऊपर कर्जा है नहीं है, वो जो मर्जी, चाहे कोई कर्ज खा खड़े हुए हैं, वो कहते हैं हमारे ऊपर हमारे कर्ज हमसे लिया था इस बंदे ने या बंदी ने, और परवाह ही नहीं होती, नहीं देते। हालांकि आपको पता है कि उसकी शहीद भी हो। तो एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, उसने कहा था, या रसूलल्लाह, अगर मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते मर जाऊं तो मेरे लिए क्या है? तो आपने फरमाया जन्नत। वो पलटा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर सिवाय कर्ज के, कि जिब्राईल अलैहि सलाम अभी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये बात कही, कर्ज होगा तो जन्नत में एंट्री में रुकावट हो जाएगी, शहीद की भी। तो रूह एक तरह से मुअल्लक रहती है कर्ज के साथ। तो जो वरसा है वो अपने मरने वालों पर रहम तो किया करें, वो बेचारे दुनिया से चले गए, वो तो नहीं अपना दे सकते थे, लेकिन वारिस तो दे दें। तो बड़ी बेरहमी हो जाती है, इसीलिए इंसान को अपनी जिंदगी में कर्ज से जितना बच सके उतना बचना चाहिए, अनलेस बहुत ही कोई मजबूरी हो, वरना कर्ज ना लें। आप जैसे घर वगैरह अगर कर्ज पे लिए हुए तो घर को बेचें और कर्जा अदा करें, नहीं तो वारिस उसके और प्रॉपर्टी जो है उसकी में से या उसके कैश जो पड़ा हुआ है बैंक में उससे कर्जा अदा करें, कोई भी यानी कर्ज अदा होना चाहिए जैसे भी है, नहीं तो और मुसलमानों में से भी कोई कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये भी एक नेकी होगी कि अपने किसी मुसलमान भाई दुनिया से चला गया, वो बेचारा नहीं आ सकता, वो आ सके तो आके कुछ कर ले अपने लिए। तो मुसलमानों में इतनी वो होनी चाहिए कि उसका कर्ज अदा करने, कहते हैं ना लोग के हम मैयत के लिए क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, भाई आप दुआएं तो करेंगे ही और भी चीजें जो भी आप सदका खैरात करते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर कर्ज है तो वो भी अदा करें। और कर्ज माली कर्ज भी हो सकता है, ये भी कर्ज है कि अगर उसके रोजे रह गए ये भी एक कर्ज ही है उसके ऊपर, ये भी एक कर्ज ही है उसके ऊपर कि अगर उसने हज पे जाना था और उसने इसकी मन्नत मानी भी थी तो ये भी एक तरह का कर्ज हो गया। तो ये चीजें भी पूरी करनी चाहिए। कर्ज की अदायगी के बाद फिर विरासत बटेगी, पहले पहले ना चीजें लेके बैठ जाया करो। वला हुन्ना रुबू मिम्मा तरक तुम इल्लम यकुल लकुम वलद, और उन औरतों के लिए, अरुबू है किन के लिए, मिम्मा तरक तुम इसमें से जो छोड़ा तुमने, यानी अगर तुम खुद फौत हो जाते, मर्दों को कहा जा रहा है ना कि अगर तुम फौत हो जाते हो मर्दों तो तुम्हारी औरतों के लिए पीछे क्या है, 1/4 है अगर तुम्हारी कोई औलाद नहीं। मसलन एक आदमी की 4 बीवी है तो उस चारों में से उसकी कोई, बाज दफा ऐसे होता है ना एक से शादी की नहीं औलाद हुई, दूसरी से की नहीं औलाद हुई, तीसरी से की नहीं औलाद हुई, तो वो सारी ही बे औलाद है। अब उनको इन औरतों के लिए कितना है, चौथा हिस्सा। अब वो चाहे एक है एक का वो चौथा मिल जाएगा, अगर तीन बैठी हुई है तो 1/4 ही मिलेगा, हर एक को 1/4 नहीं मिलेगा, 1/4 के पोर्शंस कर दिए जाएंगे, ठीक है समझ आई। लेकिन 1/4 निकाला जाएगा उसकी विरासत से, तीन के लिए 3 1/4 नहीं निकाले जाएंगे, एक निकाल के उसको तकसीम कर दिया जाएगा, समझ आ गई बात। फइन काना लकुम वलद, तो अगर तुम्हारे लिए औलाद है, फलहुन्न थुमुनु, तो उनके लिए किन के लिए, इन तुम्हारी बीवियों के लिए, चाहे वो एक है चाहे एक से ज्यादा है, थुमुन है 1/8 है, मिम्मा तरक तुम जो तुमने छोड़ा। अब अगर तुम्हारी औलाद है तो जाहिर औलाद को भी मिलना है, तो अब बीवियों के लिए कितना है, 1/8। अब ये भी कैसे है, एक है तो उसको 1/8 मिल जाएगा, एक से ज्यादा है तो 1/8 को ही शेयर करेंगी वो इक्वली, ठीक है। मिम्बादी वसीयत इन तू सुना भी है अवदईन, इसके बाद के वसीयत पूरी की जाए, वसीयत अगर वो करके गया हुआ है। देखिए एक बात याद रखें, वसीयत जरूरी नहीं है कि हर बंदा करके ही जाए, अगर आपके नहीं कोई चीज वसीयत करना चाहते नहीं करें आप, ठीक है। वसीयत तब है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी मेरी ये चीज मैं मसलन है कि फलां इदारे को दे दूं या फलां में जगह पे दे दूं मेरे मरने के बाद ही, अगर आप अपने वारसों के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं तो वारसों के लिए अल्लाह ने कानून दे दिया, अब आपको नहीं जरूरत है बेटी के लिए इतना बेटे के लिए इतना, मैं समझती हूँ फलाने को इतना अपना। हाँ गैर वारिस जो है, कोई भांजी है कोई भतीजी है, इनके हिस्से नहीं है उसके अंदर, या कोई और ऐसी खाला है या कोई मामू है, कोई मतलब ऐसे लोग जिन जिनका मैं एक वैसे बात कह रही हूँ कि जिनका विरासत में हिस्सा नहीं बन रहा, बाज दफा कोई ऐसे कजन्स हैं जो नहीं उनके हिस्से बन रहे, लेकिन आपको लगता है कि इनकी मदद हो जाए, चलो अभी मैं अपनी जिंदगी के अंदर इनका करती हूँ, मेरे मरने के बाद बेचारे क्या करेंगे, इनके हालात ऐसे हैं, तो एक नेकी के तौर पे चलो इनको कुछ दे जाती हूँ, तो फिर आप वसीयत लिखते हैं। और लेकिन वो अपनी पूरी जितनी आपकी विरासत है उसमें 1/3 से ज्यादा उनको नहीं दे सकते कि आप कहें कि मेरा जो सारा है ना मेरे बाद, बस वो फलानी मस्जिद को वक्फ कर दिया मैंने, फलां अस्पताल को मैंने दे दिया तो मेरे पीछे से नेकियां, नहीं आप सिर्फ अस्पतालों को देना मस्जिदों को देना आप जिंदगी में दे, आप वसीयत के अंदर लिख के नहीं जा सकते कि 1/3 से ज्यादा। और ये भी आप कर सकते हैं कि कुछ भी ना किसी को दें, अपने वारसों के लिए छोड़ दें, अगर इतना कम है आपके पास तो जरूरी नहीं है आपने उसमें वसीयत भी कर दी, वो बेचारे वारसों को क्या मिलेगा। मसलन किसी का एक ही मकान है सारी जिंदगी का, वही बनाया हुआ है, एक गाड़ी है एक मकान है, उसके 4 बच्चे हैं, क्या मिलेगा उनको उसमें से, थोड़ा थोड़ा करके सारों में बट जाएगा। एक आदमी है उसकी बीवी भी है 4 बच्चे भी हैं, अब ऊपर से वो वसीयत भी कर जा रहा है, तो इस तरह से नहीं, जरूरी नहीं होता कि आप वसीयत करें, अगर हाँ किसी ने करनी है किसी को बहुत ही वो है तो कर जाए, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये भी नेकी है, अपने वारिसों को इस हाल में छोड़ो कि वो मोहताज ना हो तुम्हारे बाद, कि वो बेचारे फिर कर्जे वो भी लेते रहे, वो भी आगे कर्ज ले लेके फिर चीजें बना रहे हैं। जब तुम इतनी प्रॉपर्टी छोड़ रहे हो तो उसको वारसों के लिए छोड़ जाओ, कम से कम वो कर्जा लेने से बच जाएंगे कल को। तो बाज दफा ऐसे होता है कि लोग इधर उधर वसीयतें कर जाते हैं या फिर विरासतों के बुरे हाल बढ़ती ही नहीं है, बच्चे भी कर्जे लेते रहते हैं या वो औलाद में से भी कोई मर जाता है, अभी जनाब विरासत ही नहीं बटी, तो ये हाल होता है। तो तरक तो मेम्बादी वसीयतें तू सूना भी है अवदैन। अब यहाँ पे आप देखें कितना टेबल में से भी आपको पता चल रहा होगा, अगर आदमी की औलाद है तो फिर उसको बीवी को 1/4 मिलेगा, सॉरी 1/8 मिलेगा। अगर आदमी की औलाद नहीं है तो 1/4 मिलेगा। आदमी को कितना मिलेगा अगर बीवी की औलाद नहीं है? हाफ मिलेगा। अब यहाँ पे औरतें कहती हैं लोग उसको हाफ मिल रहा है, और औरत अगर औलाद नहीं है उसकी तो उसको 1/4 मिल रहा है, ये क्या बात हुई? तो थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर आपको पीछे भी आपने देखा कि बेटा बेटी है तो बेटे के दो हिस्से यानी दो औरतों के बराबर उसको हिस्सा मिलेगा, यानी दो हिस्से उसके और एक हिस्सा बेटी का। एक बेटा और एक बेटी है तो तीन हिस्से करेंगे, दो हिस्से बेटे को और एक हिस्सा बेटी को, ठीक है, इस तरह होगा। तो ये क्या बात हुई, ये तो हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी है, ये तो बड़ा ऐसे है वैसे। एक तो सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के हुक्मों के ऊपर समझने की जरूर आप कोशिश करें मगर एतराजात ना करें। क्यों? इन अल्लाह क्या ना अलीमन हकीम, अल्लाह ताला इल्म वाला हिकमत वाला है। आप अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इल्म वाली नहीं है, ठीक है, कि जो हम अपने आप को समझें कि मेरी अकल बड़ी है क्यों ऐसे किया, नहीं, ये तो नाइंसाफी। आपको ज्यादा पता है इंसाफ का कि अल्लाह को? अल्लाह अपनी मखलूक का ज्यादा हमदर्द है कि आप? अल्लाह ताला ने हर चीज को देख के कवानीन बनाए, किसी मेरी और आपकी मर्जी को देख के तो नहीं बनाने। तो सबसे पहली बात यह कि जहां पे भी आप ये देख रहे हैं, एक तो हर जगह ऐसा नहीं है कि औरत को हाफ ही मिलेगा और मर्द को, आप आगे देखेंगे इक्वल भी मिलता है, तो हर रिश्ते में नहीं है। नंबर टू बात यह कि देखें, औरत के ऊपर कोई किसी किस्म की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये याद रखें बात। और ये बातें मेरा ख्याल आज का लेक्चर अगर आदमी सुने तो ज्यादा बेहतर है कि औरत के ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने नहीं डाली, आदमी पे डाल दिया। आदमी जब निकाह करता है तो बेसिकली वो इस चीज का एहद करता है कि इस औरत की तमाम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, उसका मकान देना यानी रहाइश देनी उसको, उसका खाना पीना पहनना ओढ़ना, उसकी दवाइयाँ, उसका इलाज मुआलजा, वो तालीम ले रही है तो उसका खर्चा, उसकी हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इस आदमी पे की है। औरत अगर कमा रही है तो वो उसका है, और वो आदमी अगर उसको कहता है ठीक है कमा लो तो ठीक है वो कमा ले, लेकिन वो उसकी अपनी है वो प्रॉपर्टी, वो आदमी के ऊपर खर्च करती है तो उसकी नेकी है, उसका एहसान है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। औरत नहीं कमाती तो इस वजह से आदमी नहीं उसको तलाक दे सकता कि तुम नहीं कमाती तो तुम्हें मैं तलाक दे। हाँ, मगर आदमी नहीं कमा के लाता तो औरत उससे तलाक मांग सकती, क्योंकि ये उसका हक है कि वो लेकर आए, ये हक है कि वो आदमी उस पर खर्च करे। अल्लाह ने कवाम बनाया आदमी को, आगे आप पढ़ेंगे सूरह निसा में और भी अहकाम आ रहे हैं कि इसलिए कि वो खर्च करते हैं, और खर्च ही ना करें तो आदमी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें, जब औरत पहले एक बेटी होती है, अब उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? उसके बाप पे है। उसकी शादी हो जाती है, उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हस्बैंड पे है। खुदा ना खास का उसको कोई तलाक हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके भाइयों पे है, और उधेड़ उम्र की हो जाती है, उस शौहर चलो नहीं कमा रहा या कुछ ऐसी बात है या शौहर ने छोड़ दिया या फौत हो गया, तो तब उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बेटों पे है। अगर वो भी नहीं है तो फिर उसके जो ससुराल है उनके ऊपर है, जो जो उसके देवर जेठ वगैरह उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मेका भी नहीं है कोई भी उनके ऊपर। औरत को कहीं पे भी ऐसे नहीं छोड़ा गया कि चलो जाओ आप, ये वेस्ट नहीं है, जाओ जाके कमाओ और लेकर आओ और तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम भी तो घर में खाती हो, नहीं, इस्लाम ने तो नहीं ये कहा। तो ये तो हमने पता नहीं कहाँ से सीखे हैं, दूसरों से सीख के, और फिर उसके बाद आज हम पता है क्या बन गए, आधे तीतर आधे बटेर, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस्लाम भी थोड़ा थोड़ा लेना है, साथ वेस्ट को भी कॉपी करना है, तो आज वो हमारा क्या मलबूबा सा बन के रह गया।
डर के भी नहीं रहे, एक को तो फॉलो करो, उधर गए तो फिर बेड़ा गर्क है औरतों का, तो फिर कमाओ भी, घर लाके सब पर खर्च भी करो, बच्चे भी पैदा करो, घर को भी देखो, सब करो। तो औरत की तो इसके अंदर मुश्किल ही मुश्किल है। लेकिन इस्लाम ने देखो कैसे कहा कि नहीं, किसी जगह औरत ने खर्च नहीं करना, मगर लेती हर जगह से, कहां कहां से ले रही है। मेहर औरत को मिलता है, दैट्स हर प्रॉपर्टी, उसके वालदेन भी नहीं रख सकते, उसके भाई नहीं रख सकते मेहर। नंबर टू, विरासत में उसको हिस्सा मिलता है, विरासत जो ये देखिए आप सारे हिस्से देख रहे हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी। नान नफका उसको मिलता है कि आदमी उसको उसके खर्चे का देता है। तो औरत तो यानी हर तरह से लेने वाली ही है ना, हर तरफ से ले रही है, खर्च उसने किसी पे नहीं करना, उसकी जिम्मेदारी कहीं नहीं, अपनी जिधर को मर्जी खर्च करे, वो उसका अपना शौक है, जहां मर्जी चाहे। तो हम मुझे बताएं इसके अंदर से कहां से नाइंसाफी हो गई। एक आदमी है तो अगर वो बाप है या शौहर है या बेटा है, उसने तो हर जगह ही खर्च करने हैं भाई, उसको तो मिलना ही चाहिए क्योंकि उसने देना ही है, इधर भी देना है, उधर भी देना है, उधर भी देना है। तो इसलिए इस चीज को समझना चाहिए कि ये हिकमतें हैं इसके अंदर, और ये हिकमतें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ये अहकामात है। इस चीज को अब से हम एक तो बात को कोई हमारे सामने ऐसी बात करे तो समझा दे कि देखो ये हिकमत है इसके अंदर। फिर आगे हम देखते हैं कलाला के बारे में। कलाला कौन होता है? जिसका बाप भी ना हो, बेटा भी ना हो, ठीक है, माँ हो सकती है, हो सकता है उसकी माँ हो, लेकिन बाप ना हो और बेटा भी ना हो। वह इनका ना रजुल यूरथु कलालतन अव इमरातुन, एक आदमी कलाला हो या औरत कलाला हो। वला हु अखुन, और उसके लिए एक भाई हो, एक उख्तुन या एक बहन, उसकी सिर्फ एक भाई है या एक बहन है। और वो कौन से भाई या बहन है? जो माँ जाए हैं। माँ जाए कौन से होते हैं? इखियाफी, अखियाफी बहन भाई कौन से होते हैं? जिन माँ एक है, बाप चाहे डिफरेंट है, बाप डिफरेंट है। अक्सर ऐसे बहन भाई जो अखियाफी होते हैं ना, उनमें बड़ी मोहब्बत होती है, इनकी माँ एक होती है, जिनके बाप एक हो और माएं डिफरेंट हो ना, उनमें बड़ा सुतेलापन होता है। हालांकि ये भी सुतेले ही होते हैं, लेकिन उनमें बड़ा सुतेलापन होते हैं, जहां पे माएं अलग अलग होती हैं और बाप एक होता है। तो लेकिन जहां पे माँ एक होती है, अक्सर देखा गया है, बाप चाहे मुख्तलिफ भी हो, इनको भी ये भी बहन भाई ही होते हैं। तो इनका भी हिस्सा है, ये वाले कौन से बहन भाई हैं? माँ जाए अखियाफी, फलिकुल्ली वाहिद मिनहुम सुदुस, तो उनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। छठा हिस्सा यानी एक बहन है, अगर किसी की कलाला की एक बहन है या कलाला का सिर्फ एक भाई है, तो उन उस वो उसमें से चाहे एक बहन है उसको 1/6 मिलेगा, एक भाई है उसको 1/6 मिलेगा। देखिए यहाँ पे इक्वल आ गया, यहाँ पे नहीं कहा गया कि बहन को 1/6 का भी आधा मिल जाएगा। फ इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका, तो अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हो, यानी दो तीन बहन भाई हैं ये अखियाफी यानी माँ जाए, फहम शुरकाओ फिर सुलुस, तो वो एक तहाई में सब शरीक होंगे, यानी तकसीम होगा एक तहाई सब में। मिम बादी वसीयत यूसा बिहा औदैन, ये वसीयत के बाद जो वसीयत मरने वाले ने की उसकी तनफीज के बाद, और दैन कर्ज की अदायगी के बाद। एक और बात यहाँ पे आ रही है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अब आपके सवाल होंगे लेकिन फिर फलाने को कितना मिलेगा, फलां को कितना मिलेगा। तो देखें ये जो आयते हैं ना, ये पूरा इल्म विरासत है इनमें, ये छोटी बात नहीं है, इन्हीं आयतों से अहकामात निकलते हैं। तो ये एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, बेशुमार क्वेश्चंस आते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये आपको बताए जाएं इतने अहकामात। मैंने एक साल लगा के और हर रोज ये सब्जेक्ट पढ़ा, और फिर यानी इसकी तालीम ली, फिर जाके तो कुछ ये जहन के अंदर बैठा। तो ये अगर आप सोचते हैं कि एक क्लास में आपको आ जाएगा, तो एक क्लास में नहीं ये कवर हो सकता, ठीक है। ये बहुत बड़ा इल्म है, और ये वो इल्म है जिस्के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्मुल फराइज, और कुरान खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ, ये इल्मुल फराइज है, ये फरीजा है ना, आपने पहले पढ़ा, ये फरीजा है। तो ये विरासत का इल्म मामूली बात नहीं, और ये इल्म बहुत सबसे पहले जो इल्म उठ जाएगा ना, वो ये विरासत का इल्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इल्म है। और इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, और हकूक के बारे में इससे अच्छे रहो उसे अच्छे रहो ये तो सारे ही करते, लेकिन विरासत का जो हकूक है ये अदा करने, ये भी हकूक लिबाद में से है, ये पूरे करने, इसके ऊपर बहुत ही कम लोगों की तवज्जो होती है और इसका ज्यादा प्रचार भी नहीं किया जाता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब अदा करने के बाद फिर इन कलाला अगर है तो उसके बहन और भाइयों को इतना मिलेगा, लेकिन ये जो वसीयत है वो वसीयत इन यूसा भी हाथ औ दैन या दैन है, गैरा मुदार होना चाहिए, नुकसान नहीं इसमें किसी को पहुंचना चाहिए। नुकसान कैसे पहुंचता है वसीयत में या दैन में? देखिए वसीयत में नुकसान ऐसे पहुंच सकता है कि कोई कह जाए कि जी फलां बच्चा है ना, मैंने इसको आग कर दिया, बस इसका मेरे साथ अब कोई ताल्लुक नहीं, इसने मुझे बड़ा सताया, ये वसीयत कर दी जुल्म के ऊपर मबनी, किसी के ऊपर भी ज्यादती पे मबनी, ठीक है? अब या अपनी जिंदगी में किसी एक वारिस को और ज्यादा देगा, इस बच्चे ने मेरी बड़ी खिदमत की है, इसने मुझे अपने पास रखा था, इसको इतना इतना दिया जाए, ये नहीं है। वारिस के हक में वसीयत नहीं की जा सकती। तो वसीयत के अंदर गड़बड़ कर जाना, वसीयत के अंदर किसी पे जुल्म और ज्यादती कर देना, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, किसी के साथ कुछ कर दिया, ये है जो जरर देने वाली वसीयत है। इसी तरह बाज दफा दैन के अंदर नुकसान वाली बात हो जाती है, और वो क्या है कि कोई खड़ा होके वैसे ही कह दे कि इसने मेरा कर्ज देना था, जबकि ऐसा नहीं था, या 1,000 देना था तो 10,000 बना के रख दे, या मरने वाला लिख के गया हुआ कि मैंने इतना कर्ज देना, और पीछे वाले जो है ना वो उसको कम कर दे या वसीयत ही बदल दे, ये भी तो वसीयत में जरर पहुंचाना है ना। तो ये बातें वो नहीं है, कोई खेल तमाशे की बात नहीं है। तो गैरा मुदार होना चाहिए, नुकसान ना देने वाला, वसीयतम मीन अल्लाह, ये वसीयत है अल्लाह की तरफ से। और फिर से आया है क्या, वल्लाहु अलीम, अल्लाह ताला इल्म वाला है, उसका इल्म हर चीज का अहाता किए हुए, उसको जैसे हर चीज माइन्यूट डिटेल्स गहराई तक जो उसको इल्म है, हमें नहीं है, हम नहीं जानते, हम समझते हैं हम किसी के बड़े हमदर्द है, अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है कि इसको कितना मिलना चाहिए, और वो हलीम है, इल्म वाला है, बड़ा हौसले वाला, लोग इसमें इधर उधर करते भी हैं, अल्लाह ताला मोहलत देता है उनको, मोहलत देता है। और अगर वसीयत के अंदर कोई गलत वसीयत कर ही गया तो ये नहीं बाद में कहना मेरी अम्मी जाते हुए ये कह गई थी, बस हमने तो ऐसे ही करना है, अगर अम्मी को नहीं समझती, नहीं उनको पता था, उनको इल्म नहीं था, तो आपको तो इल्म है, आप क्यों वो काम कर रहे हैं कि अम्मी ये कह गई थी, अम्मी कह गई थी मुझे फलां जगह जाके दफनाना, अब वो चाहे वो समुंदर पार जगह है, अब यहां से बॉडी उठा के लेके जा रहे हैं, वहीं पे दफनाना है, हालांकि दफनाने से नहीं कोई फर्क पड़ेगा, इंसान के अपने अमल हैं जो उसके साथ जाते हैं, आप मदीना में भी दफन हो जाए, लेकिन अगर अब्दुल्ला बिन उबई कहाँ दफन हुआ होगा, रईसुल मुनाफिकीन था ना, तो उसका दफन होना तो उसको नहीं बचा सकता। तो अपना ईमान देखें, अपने नेक आमाल देखें, सबसे पहले तवज्जो उन पे होनी चाहिए। अब इसी तरह और वसीयतें, कोई माँ बाप पास ऐसी जुल्म की वसीयतें कर जाते हैं, मेरे बाद फलाने से नहीं मिलना तुमने, मेरे बाद फलाने को नहीं आने देना, इस तरह की जुल्म वाली, तो उन वारिसों को चाहिए कि ऐसी वसीयतों पर अमल ना करें, अगर वो गलत वसीयत कर गया तो उस वसीयत को बदलने में कोई हर्ज नहीं, हमने सूरह बकरा में पढ़ा था। तो इसलिए ये मामला बहुत ही सेंसिटिव मामला है। अब ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे पास कि जी अगर कि ये इस तरह हो जाए तो फिर क्या होगा, मसलन कोई औरत कहती है कि अगर मेरा शौहर फौत हो जाए, बच्चे अभी छोटे हैं, मैं क्या करूं, क्या उनको सारा दे दूं, जायदादें दे दूं और विरासत बांट के बैठ जाऊं? तो देखें अगर माँ ही उनकी गार्डियन है, और जो ज्यादातर आज तो यही होता है, चच्चा वगैरह कौन देखता है, माँ ही होती हैं जो बेवा औरत होती है जो यतीम बच्चों की किफालत कर रही होती है, तो हमने पढ़ा है ना वला तो सुफहा अम्वालकुम, अपने माल सुफहा को ना दे दो, बेवकूफों को ना दे दो, वो अभी ना बालिग है, उनको क्या अकल है, हाँ जब वो बालिग होंगे और आप उनमें समझ बूझ देख लें तब उनको दे, तब तक आप जाहिर है घर का खर्चा चला रही हैं, तो उनके ऊपर ही स्पेंड कर रही हैं ना, ये उन्हीं का माल है, उन पे स्पेंड किया जा रहा है, एक्स्ट्रा भगेड़ ना हो उसके अंदर, उसमें से आप खुद, क्योंकि एक बेवा औरत है, वो कुछ भी नहीं करती, वो कोई उसका आमदन नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर तुम फकीर हो तो ले सकते हो उसमें से, लेकिन बिल मारूफ। ये देखे ना आप पीछे, आप जरा निकाले आयते, तो इसके अंदर से आपको पता चलेगा कि सारे अहकाम आ गए इसमें। वब्तलुल यतामा वाली आयत के अंदर देखे हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि आप उनको आजमा लो और उनको देख लो, अगर तो वो इस काबिल हैं कि वो संभाल सकते हैं तो फिर तुम उनको हाथ में दे दो। आयत नंबर 6 में है, अगर वह मन का ना फकीर फलियाकुल बिलमारूफ। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। वो औरत बच्चों की वेलबींग पे, उनकी पढ़ाई पे, उनके सब पे खर्च कर रही है तो ठीक है। हाँ, उसमें अगर कोई और तीसरे का भी हिस्सा निकलता है, मसला है उस आदमी के वालदैन का हिस्सा, वो जिंदा है, उनका हिस्सा निकलता है, तो फिर हाँ उनको देना पड़ेगा, उनको देंगे आप। अनलस वो उनको दे दिया, वो कहते नहीं हमने तो अपने यतीम इन्हीं को देना है, तो आप नहीं, हम इसको रहते, वो वापिस कर देते हैं, वो उनकी मर्जी। लेकिन अदरवाइज उनका भी हिस्सा निकलेगा। अगर देखें, याद रखिए, अगर एक आदमी फौत हो जाता है और उसकी जिंदगी में उसके कोई वारिस थे, मिसाल के तौर पे उसके वालदैन जिंदा थे, उसके और जो भी थे वो जिंदा थे, उसके बेटे भी जिंदा थे, लेकिन जब वो फौत हुआ उसके बाद एक दिन बाद उसका बाप फौत हो गया, तो बाप की विरासत बनेगी तब भी, क्योंकि वो जब वो फौत हुआ था तो उसका बाप जिंदा था कि नहीं था। 10 साल बाद उसका एक बेटा फौत हो गया, जैसे आजकल हमारे हालात है, विरासत तो बांटनी नहीं है, वारिस मरते जाते हैं, विरासत नहीं बढ़ती, तो बेटा फौत हो गया, लेकिन इसका भी हिस्सा है, अगर उसकी कोई औलाद है तो उसको मिलेगा वो हिस्सा, क्योंकि वो आपने बांटी नहीं उस वक्त, टाइमली बांट देते तो वो अपनी जिंदगी के अंदर उससे कुछ कर लेता। होता ही है कि बेचारी औलाद रुलती रहती है, वो इधर उधर से, जैसे मैंने कहा, कर्जे पकड़ती है, क्या क्या करती है, लेकिन वो नहीं 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 हमने नहीं बांटनी, नहीं है, हमने बांट ली तो फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा। बाज दफा औरतें कहती हैं कि हमारे हाथ में क्या रहेगा, और हमने बांट ली तो हमारी तो अभी जिंदगी पड़ी भी, तो हम क्यों बांटे, चाहे बच्चे जवान है, चाहे वारिस सारे हैं, लेकिन हम क्यों दें। वो आठवां हिस्सा नहीं लेके बैठती, वो पूरा ले लेती। इसी तरह बाज दफा ये भी होता है कि बच्चे छोटे हैं, आदमी फौत हो गया, अब बेटियां ही हैं सिर्फ, अब बेटियों का हिस्सा बनता है औरत का, बेवा औरत का हिस्सा बनता है, और आदमी जो फौत हुआ उसके भाइयों का हिस्सा बनता है। अब ये औरत कहती नहीं मैं क्यों दूं, मेरे देवरों ने तो हमें पूछा नहीं, वो मेरे जेठ ने तुम्हारे साथ ऐसे किया, मैंने तो नहीं देना ये उनको, तो इनका तो नहीं कुछ बनता, मेरी बेटियों को सारा मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं, उनका भी हिस्सा बनता है, उनको देना पड़ेगा, चाहे आपके कितने भी ग्रजेज हैं उनके साथ, आपके क्या हालात हैं, या आपको कौन कितना पसंद आता है या नहीं पसंद आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाज दफा ऐसे होता है कि एक औरत है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन आदमी अगर अपनी जिंदगी में ये सोचे, ये बात को समझे कि अगर मैं चला जाता हूं दुनिया से, तो ये औरत जो रह जाएगी, इस ये किधर दर दर फिरती रहेगी, आठवां मेरे पास तो इतना कुछ है भी नहीं, आठवें में से इसको क्या मिलेगा, ये किधर अपना गुजारा करेगी, और आजकल जो हालात है कोई भी अपने पास नहीं रखता, तो इसका क्या बनेगा। तो अपनी जिंदगी में उसको कुछ गिफ्ट कर सकता है, जिंदगी में कोई भी किसी को गिफ्ट कोई भी कर दे तो कोई हर्ज नहीं है। हस्बैंड ने अपनी बीवी को चाहे किंतार भी दे दिया हो, आगे आता है तोहफे के अंदर, वो चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी दे दी हो, तो अपनी जिंदगी में आदमियों को ऐसे करना चाहिए कि अगर उनको अपनी बीवियों का इतना ख्याल है, तो अपनी जिंदगी में कम से कम कोई मकान, कोई कोई चीज उनके नाम कर दें, ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके, अगर वो दुनिया से चला जाता है वो मोहताज ना हो। इसी तरह बाज दफा ये भी होता है, ये भी एक क्वेश्चन आया है, हाँ, कि अगर मिसाल के तौर पे एक औरत एक घर के अंदर रहती है और बच्चे भी हैं भाई, अब बेटे घर के अंदर रह रहे हैं और फिर बाकी कुछ बच्चे बाहर हैं और कुछ हैं, अब क्या करें, ये जो है घर बेचें और क्या सारों को बांट दिया जाए और क्या, नहीं जरूरी नहीं होता, बेचना ही हल नहीं होता कि बस फौरी तौर पे हर चीज बेची जाए और हर चीज को किया जाए, ये नहीं बात कही जा रही। हम ये क्यों हर वक्त समझते हैं कि बेचना है फौरन, देखें अगर वो ऐसी कोई सिचुएशन है तो सबके नाम उस चीज को लगा दिया जाए, मिसाल के तौर पे कोई एक फैक्ट्री है या कोई एक मकान है या कोई एक वो, उसको फिर सारे वारसों के नाम पे लगा दिया जाए, कि जब भी बिकेगा तो चलो उनका भी नाम उसके अंदर है, उनको भी मिल ही जाएगा, मगर उनके नाम तो जरूर लगाया जाए ना। इसी तरह एक और सवाल है कि भाई अगर ज्वाइंट अकाउंट है, अब मर्द भी जॉब करता है औरत भी जॉब करती है, या चलो औरत जॉब नहीं भी करती ज्वाइंट अकाउंट है, तो देखिए ये दो सूरतें इसके अंदर। नंबर 1 सूरत ये कि ज्वाइंट अकाउंट आदमी ने इसलिए रखा हुआ है कि जस्ट बाज दफा टैक्स बचाने के लिए कर देते हैं, बाज दफा या कोई प्रॉपर्टी बीवियों के नाम पे ले लेते हैं, उनको देने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि टैक्स बचे। तो सबकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो फिर औरत की प्रॉपर्टी नहीं होती। अनलेस आदमी कहे कि मैंने तुम्हें दे दिया, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, वो कहता चलो तेरे नाम पे ले लेता हूँ, क्योंकि कल को पूछ गिछ होगी, हिसाब होगा, ये होगा वो होगा, तो कहीं ये ना हो कि मेरा मेरा पता कुछ हो, तो इसलिए बीवी के नाम पे लिया। तो समझ होती है हमें कि ये हमारे नाम पे ऐसे नहीं किया गया कि मुझे दे दिया है, ये इसलिए किया गया है कि आदमी के ऊपर ना कोई नाम आए। कभी किसी के नाम पे ले लेते हैं, किसी एक बच्चे के नाम पे ले लिया, किसी के नाम पे ले लिया, सिर्फ इसलिए कि बस आदमी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। तो फिर उसमें समझ होनी चाहिए, फिर वो आदमी की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी सूरत ये होती है कि ज्वाइंट अकाउंट इसलिए है कि मर्द औरत दोनों उसमें से तसर्रुफ कर सकें, दोनों उसमें से तुम भी निकाल सकती हो, मैं भी निकाल सकता हूँ कभी जरूरत हो, लेकिन है वो मर्द का ही, नाम सिर्फ उसका इसलिए डाला हुआ है कि यहाँ के कवानीन है, कहीं ये ना हो कि सारा गवर्नमेंट ले जाए मरने के बाद आदमी के, या कन्वीनियंस के लिए कि चलो औरत भी निकाल सकती है, मर्द भी निकाल सकता है पैसे, या कोई भी ट्रांजेक्शन करनी हो तो फिर कोई मुश्किल ना हो, वो भी फिर समझ है कि भाई आदमी का ही है, ठीक है। लेकिन अगर औरत भी कमाती है और आदमी भी कमाता है और एक ज्वाइंट अकाउंट रखा हुआ है और उसमें से पैसे जाते हैं, तो याद रखिए जिंदगी में ही ये जरूर एसेट्स का हिसाब होना चाहिए किसका क्या है, इसको ऐसे नहीं लूज छोड़ना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है इसमें जा रहे हैं, और रिश्ता समझ होनी चाहिए कि औरत का जो इसमें जा रहा है वो कितने परसेंट है, आदमी का कितने परसेंट है। अगर घर का सारा खर्चा लेकिन आदमी कहता है मैं ही चलाऊंगा, तुम्हारा ठीक है इसमें पड़ा रहे लेकिन मैं ही चलाऊंगा, तुम्हारे पैसे से नहीं कुछ चलना, फिर समझ आती है कि इसमें जो कुछ भी है वो आदमी का भी है लेकिन उसका इतना परसेंट था, औरत का इतना परसेंट, ठीक है। तो ऐसे नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। और सवाल, अगर बाप की जिंदगी में बेटा फौत हो जाता है तो उसके बच्चों का उस दादा की विरासत में से हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि उनके बाप उनका फौत हो गया है। हाँ दादा वसीयत कर सकता है कि मेरे पोतों को इतना मिले, क्योंकि जो देखिए लिंक इमीडिएट को देखा जाएगा, फर्स्ट इमीडिएट लिंक क्या था, बेटा, बेटे का लिंक ही बीच में से टूट गया, तो अब दादा की विरासत वारिस नहीं बनेंगे पोते पोतियां। हाँ वसीयत जरूर कर सकता है वो 1/3 में से, जैसे मैंने आपको कहा उनका जिस जो वारिस नहीं बनता उसके लिए वसीयत हो सकती है, वो कह जाए मेरे 1/3 ये इनको मिले, ठीक है। इसी तरह अगर एक आदमी फौत होता है उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो तब भी जो बच्चा पैदा होगा उसकी भी विरासत है, वो हाँ मिला है, उसकी पेट के बच्चे की भी विरासत है, इतना ये सेंसिटिव इशू है। इसी तरह कोई औरत अपनी बीवी को एक तलाक देता है या दो तलाक देता है, यानी रजई तलाक है, इद्दत चल रही है अभी, और वो आदमी फौत हो जाता है, अब क्या होगा, क्या इस औरत को विरासत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जबकि उसने रजई तलाक दी भी थी। मिलेगी इसको, इसलिए मिलेगी क्योंकि ये अभी इद्दत के अंदर है, अगर इद्दत खत्म हो चुकी होती फिर तो समझ आ जाता कि आदमी ने रखनी नहीं, लेकिन अभी रुजू का टाइम था। क्या तो ये कुछ मसाइल है जो मैंने आपके सामने रख दिए, बाकी ये है कि विरासत के इतनी सारी इसके अंदर चीजें हैं जो हम सबको समझने के, चलें ठीक है आपको कैलकुलेशन नहीं भी आती ना, लेकिन ये मोटी मोटी बातें जरूर समझ होनी चाहिए हर एक को, क्योंकि ये है वसीयत मिन अल्लाह फरीदा। देखें पिछली आयत में क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, फरीदा तमिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है, ये अल्लाह ने ताकीदी हुक्म दिया तुम्हें, और फिर भी हम इसको समझे ही ना कुछ। आजकल आसानी बहुत है इस चीज में कि अगर आपको इस चीज का नहीं भी इल्म है तो ये जैसे ज़कात कैलकुलेटर है इसी तरह विरासत के भी कैलकुलेटर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे आप निकाल सकते हैं, मगर सारे रिश्ते फिर उसमें डाले हैं, अगर चचा है, भाई इतने हैं,
या बेटे इतने हैं, माँ बाप भी जिंदा हैं, जितने भी जिंदा हैं वारिस उस वक्त, उन सब का डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा उसके अंदर से कि कितना किसका पोर्शन बनता है। तो इस और कोई ऐसे सवालात हो तो आप जो भी आपके करीब आले में दीन को इस विरासत का इल्म जानने वाले कोई हो तो उनसे आप रुजू करें। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि ये तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, हदें हैं, अल्लाह ताला ने ये बाउंड्रीज रखी हैं। डोंट क्रॉस दोज बाउंड्रीज। क्या होगा अगर क्रॉस करेंगे? वो भी पता चल जाएगा। और अगर आप इन बाउंड्रीज के अंदर रहेंगे और अल्लाह का ये हुक्म मानेंगे, देखें इतनी बड़ी इसके बारे में वईद है ना, ये छोटी बातें नहीं है, ये मामूली बातें नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है जैसे किसी को विरासत के पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। कोई कह के तो देखे कि विरासत बांटी जाए, कोई इस चीज तरफ तवज्जो तो करा के देखे, सब उसके दुश्मन होके खड़े हो जाएंगे, अपने बहन भाई दुश्मन होके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे देखा इसकी बीवी ने सिखाया इसको, लड़की है तो कहेंगे देखा इसके शौहर ने इसको कहा होगा, वो इसको सताता होगा। तो देखें ये तो वो है जो हदूद कही गई, और अल्लाह को पता है कि यहां पे लोग डंडी मारते हैं। तो फरमाया व मैं युति अल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलनहारु खालिदीन फीहा। जो इताअत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, किस चीज में इताअत की बात आ रही है? ये हदूद में, ये हदूद के ये कवानीन, किसका कितना शेयर बनता है, किसको कितना मिलना चाहिए, और ये भी के वसीयत में कितना, क्या जो उसने कहा उसके अंदर, और जो कर्ज है उसके बारे में, ये सब हदें हैं जो अल्लाह की हदों को इताअत करता है, जो इनको मानता है अल्लाह उसको दाखिल करेगा जन्नत में, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, इसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। दालिकल फौजुल आजीम, ये है बड़ी कामयाबी, ये है बड़ी कामयाबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहां तक कि वसीयत में किसी को जरर पहुंचाना कबीरा गुनाह है। फरमाया कि हर हकदार को उसका हक पहुंचा दिया जाए, हर हकदार को। ये वो मैटर्स हैं जो इंसानी हकूक, इंसानों से मुतालिक हकूक हैं, और इंसानों से मुतालिक हकूक के बारे में अल्लाह से बहुत डरना चाहिए। क्योंकि देखें आगे आ रहा है वो मैं यासिल्लाह व रसूलहू, और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की और रसूल की। नाफरमानी किसमें? यही जो जो बातें आ रही हैं इसके अंदर, जो नाफरमानी करेगा, क्योंकि ये अल्लाह की हदें हैं, इनको जो तोड़ेगा, वह यतअद्दा हुदूदहू, और उसकी हदों को तोड़ेगा, युदखिलहू नारन खालिदन फीहा, वो आग में दाखिल होगा जिसमें हमेशा रहने वाला है। अब मुझे बताएं किधर गया उसकी नमाजें, उसके हज, उसके उम्रे, उसकी ज़कातें, उसके सदका व खैरात, उसके लोगों को पूछना, अगर विरासत में डंडी मारती, खालिदन फीहा, हमेशा रहने वाला है उसमें, वो तो बर्बाद हो गया। क्या देखते हैं हम कि लोग बड़ा ही चैरिटी वर्क करते हैं, बड़ा ही वो मतलब हज उमरों पे जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने बहनों के हक मारे होते हैं, और कह देते हैं नहीं बहनों ने खुद ही माफ कर दिया। वो क्या गरीब कहेगी जब वो कहेंगे बस आप बस हमारा माफ कर दें, हम क्या करें, और फिर ट्रकों के ट्रक भर के जहेज दे देंगे, और उसके बाद कहेंगे बाद में विरासत में जिसे जो नहीं देना, नीयत ये होती है ना कि विरासत में से नहीं देना, या माँ बाप कहते हैं भाइयों भाइयों ने देना ही नहीं बाद में इनको, तो इसलिए अभी इनको जहेज में दे दो। जो जिंदगी में वालदेन दें वो तो एक हिबा है, वो तो तोहफा है। क्या लड़कों की शादियां नहीं होती? उनकी भी तो शादी होती है, उस पर भी तो स्पेंडिंग होती है, लेकिन कहेंगे कि लड़की की शादी पे सब कुछ उसे दे दिया, इसकी तालीम दिला दी, इसकी शादी कर दी, बस खत्म। ये है हमारी जिहालत आज, कि हम वो ही हिंदुआना चीजें जो है ना वो हमारे अंदर आ गई। हिंदुओं के अंदर नहीं विरासत में कोई होता, बस जहेज ही दे दिया खत्म, वो ही हमारे अंदर आज। कहाँ पे कौन सी बहनों को हिस्से दिए जाते हैं, या कौन सी बेटियों को हिस्से दिए जाते हैं? कोई भी। और अक्सर जगहों पे आप देखेंगे माफ करा दिया जाता, बस माफ कर दिया, नहीं उसने माफ ही कर दिया तो फिर क्या, माफ कराया ना उसने, चाहिए कि उसको दो पहले, उसके बाद कहो कि अब मुझे वापस दे दो, देखो फिर कितनी दफा देती है वो,
दिया है नहीं तो कह देना माफ कर दी माफ कर दी, जब दिया ही नहीं तो फिर माफी की क्या बात है। आप पहले दे के देखो उसको, फिर उससे मांगो कि अब मुझे दे दे। एक तो हिस्सा खा जाते हैं धड़ल्ले से, फिर कहते भी हैं माफी कर दिया उसने। तो हम तो देखें, वैसे अगर हमारे बहन भाई भी हो तो बहन भाइयों के भी पर्स से उनके वॉलेट से हम पैसे नहीं निकाल के खा लेते। लेकिन आप ये देख लें, यहाँ पे बगैर उनकी इजाजत के उनका हिस्सा खाए चले जाते और कोई एहसास नहीं, बस उनको जरूरत ही नहीं। जरूरत है या नहीं है? अल्लाह ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि जो अमीर है उनको दिया जाए, उनको ना दिया जाए, जो फकीरों को बस दिया जाए, जो बहन भाई गरीब है उनको मिलेगा, जो बेटे बेटियां गरीब है उनको मिलेगा, नहीं, सबका हिस्सा बताया गया। हाँ अगर कोई वो अपनी खुशी से कहे उनको मिल गया, वो कहते नहीं हमने इसके वो देना है तो दे दे। जैसे मैंने आपको कहा कि वो दादा दादी है वो कहते हैं हमने देना है इनको, हम दे दे। कोई भाई है वो कहते हैं हमने अपनी बहन को देना ही है, या बहनें हैं वो कहती हैं नहीं हमारे भाइयों को जरूरत है हमने उनको देना है तो दे देंगे। वो तो उनका फिर माल है, जिस पे मर्जी खर्च करे। वैसे नहीं अपनी जिंदगी में हम लोगों को देते रहते, जिसको जितना मर्जी हमारा दिल करता देते हैं, तोहफे भी देते हैं, कोई को और भी खर्च करते हैं तो देते रहे। लेकिन ये नहीं कर सकते, कितना दिया ना कुछ है और कह दिया माफ हो गया। और आप देखिए यहां पर फरमाया खालिदन। अच्छा आप देख लें, जन्नत वालों के लिए आया खालिदीना, जहन्नुम वालों के लिए आया खालिदन, ये क्यों ऐसे है? हाँ वो जमा में आया हमेशा रहने वाले, और ये वाहिद में आया, वजह तो कुछ तो होगी ना। देखिए एक तो बात ये है कि वहां जो जन्नत के अंदर है ना, सारे मजलिसे भी होंगी, बैठेंगे भी, कुछ गप्पियां भी होंगी, इकट्ठे भी होंगे, देखेंगे भी एक दूसरे को, मिलेंगे भी एक दूसरे। जहन्नुम वाले तन्हा होंगे, नंबर वन बात यह है कि वो ऐसे चैम्बर्स में होंगे जहां पे उनको अकेले ही बांधा गया हो, आग होगी। और दूसरे, जब इंसान तकलीफ में होता है ना तो कोई और ना उसके पास आता है, ना वो कोई पूछने वाला होगा, और कोई पूछने वाला होता भी तो इंसान अपनी तकलीफ में अकेला ही होता, कोई उसकी तकलीफ शेयर नहीं कर सकता। जो उसके ऊपर गुजर रही होती है वो उसमें तन्हा ही होता है। और ये इतनी खौफनाक बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बारे में कि एक आदमी 70 साल तक नेकी के अमल करता रहता है, 70 ईयर्स नेकी कर रहा है, नमाजें, तहज्जुदें, इबादतें हो रही हैं, सदके खैरात हो रहे हैं, मस्जिदों में काम हो रहा है, वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, फिर वसीयत के वक्त जुल्म करता है, वसीयत के वक्त जुल्म करता है, कह जाता है मेरे बाद देखो ये ना करना, मेरे बाद देखो वो ना करना, मेरे बाद देखो इसके साथ ना ताल्लुक रखना, तो इसका खात्मा बुरे अमल पे होता है और वो जहन्नमी बन जाता है। और एक शख्स बुराई का अमल 70 साल तक करता रहता है लेकिन अपनी वसीयत में अदल करता है और खात्मा उसका बेहतर हो जाता है तो जन्नत में दाखिल हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, यानी इंसान का अमल जो है ना उसके खवातीम पे डिपेंड करता है कि इंसान का खात्मा किस पे होता है, एंडिंग किस पे होती है। एंडिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे एंडिंग ही खराब कर दी। अब सारा कुछ खाना बनाती है, आखिर में आके आपने उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज कर दी कि वो नमक ही पर सारा फेंक दिया तो क्या उसका हाल हो जाए, आखिर में आपने उसका कोई बेड़ा गर्क कर दिया तो क्या होगा। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मर्द या औरत अल्लाह ताला की इताअत में 60 साल तक लगे रहते हैं, फिर मौत के वक्त वसीयत में कमी बेशी करते हैं तो उनके लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है। तो जो इंसान इन अहकाम को मान लेगा, इनमें कोई हीले एक्सक्यूजेस नहीं निकालेगा, वारिसों की कमी बेशी नहीं करेगा, तो वो जन्नतों के अंदर होगा। और जो इंसान, देखो क्या इंसान एक माल की खातिर, 4 पैसों की खातिर, जो वारसों के पास भी हमेशा थोड़ी रह जाने, इनके ऊपर भी नहीं उसको मिल जाए, नहीं ये मेरा बड़ा लाडला है, नहीं ये छोटा है इससे बड़ी मुझे मोहब्बत है, नहीं ये नहीं बेटों से मोहब्बत ज्यादा है, बेटियां तो चलो अपने घर की हो गई, वो तो अपने हस्बैंड के पास चली गई, हम उनसे नहीं कुछ। जो आप खुद सोचो, जिन वारसों के पास छोड़ के जाओगे इनके पास, कि हमेशा रह जाना, क्या हमेशा रहेगा? नहीं। तो फिर क्यों ऐसी डंडियां मार के अपनी आखरत खराब करते हो, क्यों इसके अंदर हेरा फेरी करते हो अल्लाह के अहकाम में? जो जिसका हक है दे दो, चाहे आपको वो पसंद है नहीं पसंद, जब हम सोचते हैं इसको ज्यादा दे देंगे ना, पता नहीं सारी जिंदगी इसको यही काम आता रहेगा, वो भी खत्म हो जाना। और अगर हमने इसको नहीं देना कि इससे छीन के पता नहीं हमने इसको कितना महरूम कर देना। फरमाया वलहु अज़ाब मुहीन, अहानत वाला अजाब है, रुसवाई वाला अजाब है उनके लिए। सोचें कि रुसवाई वाला अजाब क्या मतलब है, कि जिस्मानी अजाब तो होगा, रुसवाई भी होगी वहां पर। मैं ऐसे सूरह आराफ पढ़ रही थी तो एक आयत के ऊपर मैं रुक गई। पता नहीं ऐसे ही उसने मेरे दिल को पकड़ लिया कि क्या होती है रुसवाई। ऐसे अनएक्सपेक्टेड था, मैं एक्चुअली मैं ऐसे ही पढ़ रही थी तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आयत नंबर 44 है कि बात हो रही थी कि वनादा असहाबुल जन्नति असहाबुन नारी, जन्नत वाले जो होंगे वो जहन्नम वालों से पूछेंगे, अन कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, कि हमें तो हमारे रब ने जो वादा किया था वो हक हुआ, फहल वजद तुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, तुम्हारे साथ जो तुम्हारे रब ने वादा किया था वो हक हुआ। कालू नाम, उन्होंने कहा हाँ, हमारे हमारे साथ भी जो अल्लाह ने वादा किया था ना, वाकई अल्लाह ने कहा था इन इन चीजों के बदला जहन्नुम है, तो हमारे साथ भी जो वादा हुआ हुआ था वो हमारे साथ भी पूरा हुआ। तो अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आगे क्या आएगा, तो आगे जब पढ़ा फअज्जन मुअज्जन बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, तो एक निदा देने वाला ऐलान करेगा, एक ऐलान करने वाला उनके दरमियान ऐलान करेगा, लानत तो अल्लाह की जालिमों पे। अब एकदम आप वो हो जाते हैं ना कि हाय ये कैसी बात। मैं ये सोच रही थी कि देखो हमें दुनिया में कोई ना ऐसे लानत मलामत कर देना, लानत है तेरे को पर, लानत ऐसे, तो इंसान के ऊपर क्या गुजरती है, सारा दिन खराब हो जाएगा, सारा दिल खराब हो जाएगा, इंसान दुखी रहता है, इसने मेरे से कैसी बात की, कोई गालम गलोच कर दे तो कितना दिल खराब होता है, कितना इंसान साइकोलॉजिकली हर्ट होता है, और बाज दफा ये फिजिकल हर्ट से भी ज्यादा हो जाता है। तो जब कहा जाता है ना जलील कर देने वाला अजाब, तो वो जो एक बेजती की फीलिंग है, वो जो एक रुसवाई है, वो जो एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर की कैफियत होगी, वो कितनी मुश्किल होगी इंसान के लिए सहन। यहाँ पे सूखी रोटी खानी पड़ जाए तो इंसान के आंसू निकल आते हैं, हाय मैंने तो कभी सूखी रोटी नहीं खाई थी, आज मेरे ऊपर ये नौबत आ गई। हालांकि इसमें कोई जिल्लत नहीं है, लेकिन जहां पे कर्ज किया जा रहा है दिन रात, जहां पे हर वक्त की एक जिल्लत है, तो जिल्लत भी इंसान कहता है ना, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है, कहते हैं ना। तो वहां पे सिर्फ टॉर्चर नहीं होगा, फिजिकल टॉर्चर नहीं होगा, जिल्लत होगी। जिल्लत इंसान से नहीं बर्दाश्त होती, कहता है मर जाऊं इस जिल्लत से। तो ये छोटी बातें हैं बताएं भला। और फिर इसके बाद आप सोचें, इस सारे को पढ़ने के बाद हमारे यहाँ कितनी अवेयरनेस है इसकी, कितनी अवेयरनेस है। आप अपने खानदानों में देख लें, चलें बाहर छोड़ें, आप अपने खानदानों में देख लें कितनी अवेयरनेस है। इल्ला माशाल्लाह किसी के खानदान ही पूरे पूरे दीनदार हों तो बात है, वरना क्या है। ये है वो हकूक है कि जहां पे सुई और छोटी से छोटी चीज तक, कसर और किल तक भी आपको बताया गया कि या कलील में भी सवाल है, इधर से उधर जरा भी चीज ना हो, इस जिस ना इसमें केयरफुल होने की जरूरत है। आपको मैंने बताया था ना कि वो जो एक शख्स था जो जंग के अंदर शहीद हो गया, तो कुछ सहाबा ने कहा कि मुबारक हो इसको शहादत, इसके लिए तो जन्नत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं, मैं देख रहा हूं जो एक चादर इसने चुराई थी वो इसके ऊपर आग बन के भड़क रही है। खयानत हो गई ना, तो सबसे ज्यादा तो खयानतें विरासतों में होती हैं, और हम दूध धुले बने बैठे रहते हैं, हम नेकी बहुत है, जब विरासतों में चाहे कितनों के हक खाए हो, अपने वो खुद को नेक समझते हैं, खानदानों के खानदान नेक हैं, नेकी की धूम मची हुई है, ये मस्जिदें बड़े बनाते हैं, यतीम खाने बनाते हैं, अस्पतालों को देते हैं, ये करते हैं, ये बहुत नेक है, और देखा जाए तो पीछे विरासत में हक मारे में, विरासत की तकसीम सही नहीं की, हक नहीं भी मारे होंगे, तकसीम सही नहीं की, जिसको जितना मिलना चाहिए उतना दिया ही नहीं, जिसका जोर चलता है वो आज वही वाला हाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे उस जमानों के अंदर होता था। मैंने कहा ना जाहिलियत का जमाना भी खत्म नहीं हुआ, हमारे पास तो इस्लाम आया ही नहीं है, हम उसी प्री इस्लामिक दौर के अंदर ही अभी तक रह रहे हैं। जैसे उसके अंदर ऐसे होता था कि जिसका जोर होता था वो सब पे कब्जा कर लेता था, इसी तरह आज भी तो है, जिसका जोर होता है वो ही कब्जा कर लेता है। जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, वो देखो सारे, अगर भाई हैं तो जिस भाई का ज्यादा जोर है उसके बेटे हैं, वो आगे बढ़ के सबको दबा लेता है। वो थोड़ा अमीर है, वो थोड़ा वो है, वो गरीबों वालों को तो चुप करा के बिठा देता है, तुमको जितना मैं दूंगा बस वही है तुम्हारा, इससे ज्यादा नहीं है। इस तरह से तो करके गसब किए जाते हैं हक। तो अगर एक बालिश्त जमीन भी किसी ने किसी की हथिया ली हुई, क्या हदीस पढ़ी थी जी, एक बालिश्त, यहां पे तो जमीनों की जमीनें हजम की होती है ना, कई कई अकाउंट, कई कई इन्वेस्टमेंट्स, कई कई प्लॉट हजम कर दिए गए होते हैं। एक बालिश्त भी किसी ने किसी की, उसका हक नहीं बनता था ना, हक ले ली है तो 7 जमीनों का तौक उसके गले के अंदर डाला जाएगा, 7 जमीनों का कैसे उठाएगा वो। अल्लाह अकबर, अल्लाह इस ज्यादती से अल्लाह महफूज रखे। क्या 4 दिन की जिंदगी इंसान क्या खा लेगा और क्या अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएगा, अगर वो इधर उधर से स्नैच करके, इधर उधर से छीना झपटी करके और अपना बना ले, क्या कितना छोड़ जाओगे अपनी औलाद के लिए। देखा गया है कि लोग अपनी इधर उधर से छीन लेते हैं और फिर अपने पास रखते हैं, उनकी औलाद भी उनकी नहीं बनती कल को, यार हराम औलाद को भी दिया होगा तो आगे कैसे बनेगी वो उनकी, फिर रोते फिरते। कम से कम हम जो ये पढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी जिंदगियों के अंदर इसको अप्लाई कर लें, किसी और को तो छोड़ें, जितना तक आप फैला सकते हैं इन बातों को फैलाएं कि मैंने ये पढ़ लिया, लेकिन कम से कम अपनी अपनी घरों के अंदर तो सब इसको अप्लाई करें, जहां तक बस चलता है वहां तक अप्लाई करा के कराएं, जहां पे बस नहीं है वहां पे ठीक है, फिर अल्लाह को पता है कि किसका कितना जोर है, किसी को बता के कह सकते हैं, बता के कहें, कहीं कई जगह पे आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे, तो कोई लेक्चर उनको भेज दें, आजकल तो व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको कोई वो चीज आगे उनको फॉरवर्ड कर दें, लेकिन अवेयरनेस लेकर आए। जो पढ़ने वाले उनका ये काम है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें, सिर्फ पढ़ के ना बंद कर दिया करें नोट्स को। अच्छा आगे अब देखते हैं, यहां तक हमारा विरासत का मौजू मुकम्मल हुआ, आगे देखते हैं औरतों के और क्या हकूक हैं। ठीक है, अच्छा, واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم। अच्छा एक बात, सॉरी एक बात रह गई, जो ये इन्होंने सवाल पूछा हुआ है कि अगर अपनी जिंदगी में देना चाहें, जिंदगी में दे लें आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो हिबा होगा, उस पर विरासत के कवानीन नहीं लगेंगे। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी औलाद के अंदर बराबरी करो, अगर मैं किसी को देता ज्यादा तो बेटियों को ज्यादा देता, तो ये लेकिन आपने फिर भी नहीं दिया, यानी अपनी पसंद या का ये पसंद से देने का हक तो अल्लाह ने अपने रसूल को भी नहीं दिया। ठीक है, तो जिंदगी में करना चाहते हैं मगर उसको विरासत मत कहें, मैं अपनी जिंदगी में अपनी विरासत देना चाहती हूँ, ये विरासत नहीं है, विरासत तो होती मरने के बाद है, कहें मैं अपनी जिंदगी में अपना जो भी बिलोंगिंग है वो अपने बांट देना चाहती, तो बांट दे कोई मसला नहीं, लेकिन सबको फिर बराबर मिलेगा, फिर ये वाले हिस्से सिर्फ विरासत वाले हैं, ये वाला कानून आप वहां पे नहीं चलाएंगे। वल्लाती यातीन अल्फाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशिदु अलैहिन्ना 4 मिनकुम। वो औरतें जो इर्तकाब करें बुराई का, बेहयाई का, फाहिशा का मतलब यहाँ पे है जिना। ठीक है, तो या अल्लाह ताला माफ करे औरत का औरत से कोई जिंसी ताल्लुक, तो ये सारा इसके अंदर ही आ जाता है, फहाशी के अंदर, बेहयाई, खुली बेहयाई, तो उसके अंदर क्या है, फस तशीदु अलैहिन 4 मिनकुम, तो 4 गवाह लेकर आओ इसके ऊपर। देखिए यहां तक आयत जो है ना, ये तो इसका हुक्म अभी भी मौजूद है, इससे आगे जो है वो मनसूख हो चुकी है। यहां तक क्या है कि अगर कोई बंदा ये अपना मुंह खोलता है ना कि फलां औरत बदकार है, फलां औरत ऐसी है या फलां है, तो याद रखिए उसको 4 गवाह लाने पड़ेंगे, अगर वो नहीं ला सकता 4 गवाह, या 3 ले आया है, 4 नहीं बने, तो फिर उसको हद्दे कजफ लगाई जाएगी, यानी 80 कोड़े, 80 कोड़े उसको लगाए जाएंगे, 80 लैशेस। क्यों?
इसने क्यों इल्जाम लगाया किसी और पे? इससे पता चलता है कि इस्लाम चाहता है कि ऐसी बातें माशरे के अंदर गॉसिप्स ना बने। फलाने का पता ना, वो तो उसके साथ है, फलां उसके साथ है, फलां का उसके साथ ताल्लुक है। ऐसे आप मुंह से बातें नहीं कर सकते, किसी के ऊपर बदकारी का इल्जाम नहीं लगा सकते, अनलेस आप चार गवाह लाए। बैठे बैठे आजकल तो शौक ही है, जिसको मर्जी जिसके साथ कर दिया। हम तो उसको उसके घर जाते हुए बड़ा देखा है, वो आदमी इनके घर में बड़ा आता है, ये इनके घर में तो ऐसे होता है ऐसे होता है। ये बोलने से पहले या तो गवाह लेकर आओ या फिर खामोश रहो, ठीक है? और गवाह भी एक नहीं, चार। और चार गवाह यही मिलना कितना मुश्किल काम है कि चार गवाहों ने एक ऐसा अमल देखा हो, इसका मतलब है फिर खामोश रहो। लेकिन हम जुबानें कितनी खोलते हैं मामला, इससे जैसे कोई मसला ही नहीं। और अगर इस्लामी माशरा हो तो हद लगेगी, और अगर आज इस्लामी माशरा नहीं है और हद किसी को नहीं लगती तो अल्लाह के यहाँ तो पूछोगी ना। भोली भाली औरतों के ऊपर बोहतान लगाना कबीरा गुनाह में से एक गुनाह है, लेकिन आराम से बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो बेहयाई की बात को किसी के ऊपर कहें कि ऐसा है, बोहतान लगाएं, तो वो चार गवाह लेकर आए। मगर एक बात याद रखिए, इतने बाज लोगों को ना ना इल्म होता है, ना उन्होंने कभी कुरान सीखा समझा होता है, लेकिन बस इस्लाम के वैसे पीछे पड़े होते हैं कि कोई ना कोई हमने, वो फिर आगे से उठ के कहते हैं लो अगर एक औरत के साथ रेप हो जाए तो क्या वो चार गवाह लेकर आती रहे? तो आपको ये पर पता होना चाहिए कि ये रेप विक्टम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये एक बदकारी औरत की बात हो रही, जो बदकारी फहाशी के अंदर कोई इर्तकाब करती है। तो उन औरतों को भी अल्लाह ताला ने कहा इनकी भी बातें ना करते फिरो। रेप वाली तो खुद विक्टम है, खुद मुद्दा ही है, वो तो खुद आगे कहेगी कि मेरे साथ ऐसी बात हुई है, वो चार गवाह थोड़ी लेने चली जाएगी। हाँ वो अब अदालत इसके अंदर सारे सबूत और सारी चीजें देखेगी कि वाकई इसके साथ हुआ भी है या ये ऐसे ही किसी को बदनाम करने के लिए या किसी को फंसाने के लिए तो नहीं कह रही, ये तो फिर अदालत देखेगी। मगर अदालत को ये नहीं कहेगी जाओ कि लेकर आओ चार गवाह। लेकिन ऐसा मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि कई लोगों को इस्लाम का नहीं पता था, तो देख कैसे अब्यूज करते हैं इन आयतों को, कैसे वो अल्लाह के कुरान के ऊपर ऐसी बातें लगाते हैं। अतकुलुना अल्लाह ही माला तालम हूं, तुम अल्लाह के ऊपर वो बातें लगाते, हराम किया अल्लाह ने ये कि वो जो तुम्हें पता ही नहीं है वो अल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा दी कि देख लो बेचारी रेप विक्टिम के लिए तो इस्लाम के तरीके है। ऐसा कुछ नहीं है। इन शाहिदों, फिर अगर वो गवाही दे दे तो रोक लो उनको, फिल बुयूती हत्ता यतवफ्फा हुन्नल मौत, तो उनको घरों के अंदर कैद रखो, समझ लो कि ऐसे कि लाइफ इन प्रिजन यानी उम्र कैद। उम्र कैद तो फिर भी उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन जब तक वो मरे नहीं वो घरों के अंदर उनको जेल कर दो, समझ लो उनको घर ही उनकी जेल बना दो। औ यजअल अल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे, अल्लाह उनके लिए कोई और हुक्म दे दे। तो ये वाला मैंने आपको पोर्शन बताया कि पहले ये सजा हुआ करती थी ऐसी औरतों की, लेकिन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दिन वही नाजिल हुई, तो आपने उसके बाद फरमाया मुझसे अल्लाह का हुक्म ले लो, अल्लाह ताला ने सियाकार औरतों के लिए रास्ता निकाल दिया, अगर शादीशुदा औरत या शादीशुदा मर्द इस जुर्म को करेगा तो उसको संसार कर दिया जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा करेगा तो 100 कोड़े और 1 साल की जिलावत नहीं होगी, ठीक है? तो और एक जगह पे आता है कि शादीशुदा को भी 100 कोड़े और पत्थरों से मार डालना, लेकिन जमहूर यानी मेजोरिटी का यही है कि नहीं, उसको सिर्फ कोड़े नहीं लगाए जाएंगे शादीशुदा को, सिर्फ रजम ही कर दिया जाएगा, पत्थर मार मार के मार देना। तो ये बाद में अल्लाह ने फिर एक रास्ता उनके लिए निकाल दिया, मगर पहले क्या था, पहले ये वाली सजा थी कि अगर गवाह मिल जाते हैं, चार गवाहों ने ऐसा काम दे दिया, ऐसा सोचो फिर तो क्या हाल होगा उस माशरे का या उस औरत का जो चार के सामने ऐसा काम कर रही होगी, अगर मिल जाते हैं तो फिर उसके लिए ये सजा। वल्लदानियातियानी, और अगर दो आए इसको यानी किसको, इसी फहाशी को, दो करें मिनकुम तुम में से यानी मुसलमानों में से, फआदूहुमा तो अजियत दो उनको। दो आए का मतलब क्या है? अब उलमा इसमें कहते हैं एक आदमी और एक औरत करें यानी जिना करें, या दो औरतें यानी होमोसेक्सुअल हो, या दो मर्द हों गे हों, वो भी इसके अंदर आ गए, यानी हम जिन्स परस्ती का कोई केस आ जाए, या फिर शादी ये जो इस्तग़फ़िरुल्लाह मर्द और औरत जिना कर रहे हैं
तो वो ऐसे लोग आए तो उनको अजियत दो। अजियत दो का मतलब क्या है कि ऐसे आदमी या तो मार कुटाई करो, या उनको जहनी तौर पे उनको कोई गालम गलोच, या उनको बुरा भला, या उनको लानत मलामत करना, या उनको ऐसी बातें कहना कि जिससे वो के बाज आ जाएं वो इससे, ठीक है, तो उनको अजियत दें। ये आयत बाज तो कहते हैं कि उन्हीं के लिए है जो ये वाला अमल करते हैं जो कौमे लूत का अमल था, ठीक है। बाज कहते हैं कि ये उन मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये उनके बारे में ही उतरी है, ठीक है। अब उनके बारे में यानी ये सजा उतरी, ये पहले थी कि उनको शर्म दिलाओ, उनको गैरत दिलाओ, उनको बुरा भला कहो, उनको जूतियां लगाओ, उनको इस तरह करो कि ये वो बाज आए। लेकिन उसके बाद फिर ऐसे जो के होमोसेक्सुअल्स हों ये या लेस्बियंस हों, उनके लिए हदीस के अंदर एक और सजा आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे तुम कौमे लूत वाला अमल करते हुए देखो तो फाइल और मफ़ऊल दोनों को कत्ल कर डालो, यानी जो करने वाला है और जो कराने वाला, दोनों को कत्ल कर डालो। यानी दोनों जाहिर है अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो उनको कत्ल कर दिया जाए। फिर इनकी सजा कत्ल हो गई, मगर इससे पहले क्या था कि उनको अजियत दो। फैंताबा व असला फ़ारिदान, अगर वो तौबा कर लें, वो अपनी इसलाह करें, ठीक हो जाएं, अपने अमल को सही कर लें, चेंज हो जाएं, तो फिर तुम उनको छोड़ दो। फारिदु अनहुमा, फिर बाद में ना उनको आर दिलाते रहो कि अच्छा तुम तो ऐसे थे ना, तुमने तो ये किया था ना। याद रखें, जब हद कायम हो जाए ना, फिर उसके बाद उस बंदे का गुनाह, फॉर एग्जाम्पल अगर एक गैर शादीशुदा जिना करता है तो उसको 100 कोड़े मारे जाए, उसके बाद नहीं उसको कहा जा सकता कि तुम तो देखा ये करते थे, तुम्हारा तो हमें पता है। फिर नहीं आप उसको कह सकते, फिर उसका जिसको दुनिया में हद लग गई, उसका यहाँ पे ही अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, अब उसका गुनाह धुल गया। फिर तो अल्लाह ताला ने उसको, वो जो क्रिमिनल है उसको भी कितना एक यानी प्रोटेक्शन दी है कि ऐसा ना हो कि वो कभी उस चीज से निकल ही ना सके, क्योंकि अगर उसके ऊपर हद भी लग गई, उसके बाद भी लोग उसको वही कहते जा रहे हैं, तो वो कभी उससे निकल के एक पाक जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। वो उसके ऊपर एक स्टिग्मा लगा देंगे। जैसे अब दुनिया के अंदर क्या होता है, अगर एक बंदे ने कुछ मसलन ना चोरी कर ली, या कहीं जेल में गया, या कुछ ऐसा उसके साथ, तो आपको पता है सारी जिंदगी वो जहां जॉब के लिए अप्लाई करेगा, वीजे के लिए अप्लाई करेगा, किसी जगह पे किसी चीज के लिए भी वो अप्लाई करता है ना, तो उसमें वो पूछते हैं कि आपका क्या पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप जेल तो नहीं गए, आपको कोई सजा तो नहीं हुई, आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, आपके ऊपर कभी कोई केस तो नहीं हुआ। सारी जिंदगी वो उसमें लिखता रहता है, वो उसको हॉन्ट करती है, उसको छोड़ती नहीं है। ये दुनिया में देखें कैसा होता है। तो लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि नहीं, जब उसको सजा मिल गई तो वो अब इसका पीछा छोड़ दो, अब उसने अपने आप को चेंज कर लिया, उसने अपनी इसलाह कर लिया, अब बस कर दो, अब उसको ऐसे ही समझो जैसे सोसाइटी के और लोग हैं। ये उसको हेल्प करेगा नॉर्मल जिंदगी गुजारने में, और अगर वो सारी जिंदगी उसी के अंदर हो रहेगा तो वो कैसे कैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता है। उसका तो बहुत चांस होगा वो वापस उसमें चले जाएगा, वो कहेगा ये तो दुनिया मुझे इसी के साथ जानती है, एक औरत के बदकारी का इल्जाम लग जाए तो वो उसके बाद फिर बस सारी जिंदगी उसको यही कहता, हमें तो पता है इसका, हमें तो पता है इसका, तो फिर मुझे बताएं वो कैसे कभी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती है। कहती ठीक है, मुझे अगर बात समझते ही हैं तो फिर मैं यही करती रहती। इन अल्लाह कहना तवाब रहीम, अल्लाह ताला तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो यहां से हमें पता चल गया कि इसकी भी सजा इस्लाम ने बताई है कौमे लूत वाले अमल की, और हम आगे इंशाल्लाह बहुत दफा पढ़ेंगे भी। ये ऐसी चीज नहीं जो एक नेचुरल चीज है कि कोई बेचारे आए बॉर्न ही ऐसे हुए थे, अगर बॉर्न ऐसे होते तो उसकी सजा क्यों होती, बॉर्न की तो सजा नहीं होनी चाहिए ना फिर, अगर वो तो फिर उसका क्या कसूर है। तो दूसरी ये बात हमें पता चलती है कि इससे इसके सद्दे बाप के लिए भी इस्लाम कहता है हदीस में कि दो मर्द और दो औरतें एक चादर में ना सोएं, दो आदमी एक चादर में ना सोएं, इसी तरह दो लड़कियां हैं वो एक ही ब्लैंकेट है उसके अंदर सो रही हैं, नहीं इनमें देखिए इसमें खराबी का चांस होता है। इसी तरह निकाह को आसान बनाना चाहिए ताकि
ये फहाशी की चीजें खत्म हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने चार की इजाजत दे दी कि ठीक है तुम चार कर लो, लेकिन निकाह निकाह करो, जिना मत करो। और इसी वजह से एक बाउंड नहीं आदमी को किया कि बस तुमने इतना ही मेहर देना तो शादी हो सकती है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कम मेहर दे के भी कर सकता है शादी। लेकिन जहां पे मेहर बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि अरब मुल्कों में कई जगह पे इतना मेहर है, किसी ने बताया मुझे कि 10,000 दिरहम से कम वो मेहर नहीं रखते। वहां पे औरतें कहती हैं कि हमने इतना ही लेना है, तो आदमियों के लिए शादियां मुश्किल हो जाती हैं। जब शादियां मुश्किल हो जाती हैं, उनकी जरूरतें भी उस मुताबिक हैं, फिर एक शादी करना मुश्किल है, एक से ज्यादा क्या करेंगे, तो फिर वो ये काम करते हैं कौमे लूत वाले। या जाहिर है मर्दों में हर वक्त रहना, औरतें तो पर्दे के अंदर है, औरत मिल भी नहीं रही। अब वो मर्दों की मजलिसों में रहते तो फिर वो ऐसे कामों में पड़ जाते। तो निकाह को आसान बनाना चाहिए, हमने इतना मुश्किल बनाया हुआ, और जिना को आसान बनाया हुआ। जिना के लिए कोई मसला नहीं है, गर्लफ्रेंड जितनी मर्जी रखो। अब मगरबी मुल्कों में सब में देखें, आप शादी एक ही करनी है, एक से ज्यादा नहीं कर सकते, वो औरत पे ज्यादती हो जाएगी। लेकिन गर्लफ्रेंड जितनी मर्जी रख लो, जिना जितने मर्जी करो, उसके लिए खुली छुट्टी है। आप खुद सोचें कि जिना में औरत को इस्तेमाल किया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, वो उसके साथ ज्यादती है, या फिर आदमी शादी कर ले वो ज्यादती है? ये ज्यादती है उसके साथ अगर वो दूसरी शादी करता है या तीसरी करता है।